आगे सबक देखिए भाई। फसलुन वअल रजुल अन युनफिका अला अबवैहि व अजदादिहि व जद्दातिहि इदा कानू फुकरा व इन खालफूहु फी दीनिहि अम्मल अबवान फलि कौलिहि तआला व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा नज़लतिल आयतु फिल अबवैनिल काफिरैन وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا। गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि इंदल अहनाफ जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इद्दत के दौरान का नफका भी खावन के जिम्मे और रिहाइश भी खावन के जिम्मे है, चाहे ये तलाक रजई हो चाहे ये तलाक बाइन हो। जबकि इमाम शाफ़ई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि मबतूता गैर हामिला, यानी वो औरत जिसको खावन ने तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं और वो गैर हामिला है, तो उसका नफका इद्दत के दौरान खावन पर नहीं होगा। याद रखो, रिहाइश तो तमाम सूरतों के अंदर वो खावन के जिम्मे है। जब भी जुदाई आ जाए मियां बीवी के दरमियान तो रिहाइश तो तमाम अहवाल में खावन के जिम्मे है। अलबत्ता नफके के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस मुअत्तदा मबतूता गैर हामिला के अंदर इख्तिलाफ फरमाते हैं और उनकी दलील जो है हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। वो फरमाती हैं कि मुझे मेरे खावंद ने तीन तलाकें दी और मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकना भी मुकर्रर नहीं फरमाया और नफका भी मुकर्रर नहीं फरमाया। और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तलाके बाइन खावंद ने दे दी है या तीन तलाकें दे दी हैं तो खावंद की मिल्कियत ही खत्म हो गई, और जब खावंद की मिल्कियत खत्म हो जाए तो उसके जिम्मे नफका नहीं होता, जैसे कि मुतवफा अनहा जौजुहा के अंदर है। वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए, चूंकि वहां पर खावन की मिल्कियत खत्म हो गई इंतकाल की वजह से, तो ये औरत जिसके खावन का इंतकाल हो चुका है ये चार महीने दस दिन इद्दत गुजारती है और इसका नफका खावन के जिम्मे नहीं होता, यानी खावन के माल में से इसको नफका नहीं दिया जाता। और वजह वही है क्योंकि खावन की मिल्कियत खत्म हो गई, तो जैसे इसके अंदर खावन की मिल्कियत नहीं तो नफका नहीं, तो मुअत्तदा मबतूता गैर हामिला के अंदर भी खावन की मिल्कियत नहीं तो उसका नफका भी खावन पर नहीं आएगा। अलबत्ता अगर मबतूता हामिला हो तो फिर वो फरमाते हैं उसकी इद्दत के दौरान नफका खावन पर आएगा, और ये नस की वजह से साबित है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं व इन कुन्ना उलाति हमलिन फअनफिकू अलैहिन्ना, कि ये तलाक वालियां जो हैं अगर ये हमल वाली हों यानी हामिला हों तो इन पर खर्च करो। जबकि हमारे नजदीक ये जो नफका होता है ये एहतिबास की वजह से होता है, जैसे निकाह के अंदर औरत अपने आप को खावंद के लिए घर में रोक कर रखती है, तो चाहे औरत मालदार ही क्यों ना हो फिर भी उसका नफका खावंद के जिम्मे होता है, क्योंकि ये नफका एहतिबास के मुकाबले में है और एहतिबास यानी औरत का अपने आप को रोकना तो पाया जा रहा है। और यहां पर ये जो मुअत्तदा है ये चाहे मबतूता ही क्यों ना हो, यहां भी एहतिबास पाया जा रहा है कि ये आगे निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत चल रही है, और ये निकाह जो है वो खावंद के हक की वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि खावंद का इस पर हक है कि पता चल जाए कि कहीं इसके पेट में खावंद की औलाद ना हो। तो जब खावंद के हक के तौर पर इस मबतूता में एहतिबास मौजूद है कि ये आगे निकाह नहीं कर सकती तो इसका नफका भी खावंद पर आएगा। बाकी हज़रत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस का जवाब हम ये देते हैं कि उसको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रद्द फरमाया था और फरमाया था कि हम अल्लाह की किताब को और अपने नबी की सुन्नत को एक औरत के कौल की वजह से नहीं छोड़ सकते। और नीज मैंने बतलाया था कि उलमा ने और भी जवाबात दिए हैं। भाई साहिब हिदाया यहां मुख्तसर एक दलील और उसका जवाब जिक्र करते हैं, लेकिन इसका यह माना नहीं कि हमारे पास सिर्फ यही दलाइल हैं। भाई दूसरे अइमा के पास भी और दलाइल होते हैं, हमारे पास भी और दलाइल हैं, लेकिन साहिब हिदाया मुख्तसरन एक आध दलील ही जिक्र फरमाते हैं। जैसे उन्होंने शुरू के अंदर जिक्र फरमाया कि यह किताब जो थी 80 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और फिर मैंने इसको मुख्तसर करके 4 जिल्दों में उसको तहरीर किया, तो लिहाजा यहां वो मुख्तसर बात करते हैं। तो चुनांचे और उलमा जवाब देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा बिनते कैस के लिए सुकना इसलिए मुकरर नहीं फरमाया क्योंकि इनका घर खतरे वाली जगह था भाई, यानी जंगल में इनका घर था, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको मुंतकिल होने की इजाजत दी। और जबकि बाज़ रिवायात में आता है कि इनकी जुबान बहुत सख्त थी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंतकिल होने की इजाजत दी। और जबकि बाज़ रिवायात में आता है कि इन्होंने खुद कहा था कि मुझे अपने खावन से खतरा है, अगरचे वो मुझे 3 तलाकें दे चुका है लेकिन फिर भी मुझे उससे खतरा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंतकिल होने की इजाजत दी, तो इसलिए हुजूर ने उनके लिए सुकना मुकर्रर नहीं फरमाया। और बाकी नफके के बारे में भी बाज़ रिवायात में आता है कि इनके खावन ने इनके पास नफका भेजा था लेकिन ये उस पर नाराज हुई कि इतना थोड़ा नफका, तो खावन को तो ज्यादा नफका देना चाहिए था, चुनांचे इन्होंने नाराज होकर वो नफका वापस लौटा दिया। तो यहां जो वो फरमा रही है कि मेरे लिए नफका मुकर्रर नहीं फरमाया, तो मुराद यह है कि हुजूर ने मेरे लिए जायद नफका मुकर्रर नहीं फरमाया। और फिर साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया कि वो औरत जिसके खावन का इंतकाल हो जाए उसका नफका खावन पर नहीं, यानी उसके माल में से नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि इस औरत के अंदर जो एहतिबास पाया जा रहा है 4 महीने 10 दिन तक ये आगे निकाह नहीं कर सकती, इद्दत गुजारेगी, तो ये एहतिबास शरीयत के हक के तौर पर है, खावन के हक के तौर पर नहीं, क्योंकि खावन के हक के तौर पर होता तो फिर उसके अंदर तो ये देखना मकसूद होता कि कहीं इसके पेट में खावन की औलाद ना हो, और उसके लिए फिर जब हैज वाली है तो हैजों को देखना चाहिए था, लेकिन चाहे हैज वाली औरत ही क्यों ना हो फिर भी शरीयत ने यह इद्दत जो है महीनों के साथ ही वाजिब की है। मालूम हुआ यह जो इद्दत है यह हक शरा के तौर पर है, हक खावन के तौर पर नहीं। जब खावन के हक के तौर पर यह इख्तिबास नहीं है तो खावन के माल में से इस औरत का नफका भी नहीं होगा, और नीज इसलिए क्योंकि नफका थोड़ा थोड़ा करके वाजिब होता है, हर हर दिन का नफका उस दिन के साथ साथ वाजिब होता चला जाता है, और इंतकाल के बाद तो खावन की मिल्कियत ही खत्म हो चुकी, माल तो वारिसों की तरह मुंतकिल हो चुका, वो इस माल के मालिक बन गए हैं। अब अगर नफका वाजिब किया जाए तो ये तो गोया वारिसों पर नफका वाजिब किया जा रहा है, और वारिसों पर तो इस औरत का नफका वाजिब नहीं किया जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि बाज़ औकात जुदाई औरत की तरफ से आती है, और जब औरत की तरफ से जुदाई आए तो वहां पर भी इद्दत के दौरान का नफका खावन के जिम्मे होगा, इल्ला ये कि वो जुदाई गुनाह की वजह से हो। तो अगर जुदाई औरत की तरफ से आए और उसका सबब कोई मासियत हो, गुनाह हो, तो इस सूरत में नफका खावन के जिम्मे नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये औरत अपने आप को रोकने वाली हो गई अपने खावंद से। और जैसे नाशिजा, वो औरत जो घर से निकल जाए खावंद की इजाजत के बगैर, तो जैसे नाशिजा ने अपने आप को रोका है तो उसका नफका नहीं होता, तो इस औरत का भी नफका खावंद के जिम्मे नहीं होगा। मसलन ये औरत जो है मुर्तद हो गई और उसकी वजह से खावन पर हराम हो गई, या इस औरत ने खावन के दूसरी बीवी के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया तो ये खावन पर हराम हो गई, तो देखो जुदाई औरत की तरफ से आई और मासियत की वजह से आई, लिहाजा इस औरत का नफका इद्दत के दौरान खावन पर नहीं होगा। हां अलबत्त रिहाइश तमाम सूरतों में खावन के जिम्मा होगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर अपने हक की वजह से औरत की जुदाई आती है, मसलन खियारे बुलूख की वजह से या खियारे इत्क की वजह से या आदम कफात की वजह से औलिया इसकी जुदाई करवा दें, तो इन तमाम सूरतों में ये जो औरत ने अपने नफ्स को रोका है खावन से, ये बतौर हक के रोका है, शरीयत ने उसको ये हक दिया था, लिहाजा इन सूरतों में नफका देना पड़ेगा भाई। और अगर खावन ने बीवी को 3 तलाकें दे दी और उसके बाद ये मुर्तद्दा हुई, या इसके बाद इसने खावन के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया, तो इन सूरतों में ये जो मुर्तद्दा है इसका नफका तो खावन के जिम्मे नहीं होगा, अलबत्ता वो औरत जिसने खावन के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है उसका नफका होगा। 3 तलाकों के बाद औरत मुर्तद हुई है, या तीन तलाकों के बाद उसने खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है, तो यहां जुदाई के अंदर औरत का अमल दखल नहीं है। जुदाई तो तीन तलाकों की वजह से आ गई थी, लिहाजा इस सूरत में नफका तो होगा, लेकिन मुर्तदा को चूंकि जेल में डाला जाता है और जो औरत जेल में हो कैद में हो उसका नफका खावंद के जिम्मे नहीं होता, जबकि वो औरत जिसने तीन तलाकों के बाद खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है उसे तो जेल में नहीं डाला जाएगा, लिहाजा उसका नफका खावंद के जिम्मा होगा। और मैंने आपको बतलाया था कि अगर यह मुर्तदा को भी जेल में नहीं डाला जाता तो इसका नफका भी खावंद ही के जिम्मे होगा इद्दत के दौरान। उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया कि नाबालिग औलाद का जो नफका होता है वो बाप के जिम्मे होता है, उसमें कोई और रिश्तेदार साथ शरीक नहीं होता, जैसे कि बीवी के नफके में खावंद के साथ कोई शरीक नहीं होता। और दलील जिक्र की थी वालल मौलूदी लहू रिस्क हुन्ना, कि वो शख्स जिसके लिए बच्चे को जन्म दिया गया है उस पर इन औरतों का नफका है, यानी उन बच्चों की माओ का नफका है। तो जब बच्चे की वजह से माओ का नफका वाजिब किया जा रहा है तो बच्चे का नफका बतरीके औला वाजिब होगा बाप पर। और मैंने बतलाया था कि जब भी मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाए तो वहां उस हुक्म की इल्लत वो मुश्तक मिनहू होता है। अकरमतुल आलिमा, मैंने आलिम का इकराम किया, तो यहां मैंने इकराम का हुक्म लगाया आलिम पर, तो ये मालूम हुआ इसकी इल्लत इस अल आलिम का मुश्तक मिनहू यानी इलम है, यानी इलम की वजह से इकराम किया है। यह जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, तो यहां पर भी जानी और जानिया पर हुक्म लगाया गया है, और जानी और जानिया ये तो मुश्तक के सीगे हैं। मालूम हुआ यहां इस हुक्म की इल्लत जिना है, ये जो 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया जा रहा है उसकी इल्लत जिना है। यह इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अस्सारिक वस्सारिकतु अईदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत जो है इनके हाथ काट दो, तो यहां पर भी सारिक और सारिका ये मुश्तक के सीगे हैं और इन पर हाथ काटने का हुक्म लगाया जा रहा है। और मुश्तक पर जब कोई हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिनहू होता है, मालूम हुआ ये चोरी जो है ये इल्लत है इनके हाथ काटने की। तो यहां पर भी अल्लाह फरमा रहे हैं वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना, बाप को मौलूद लहू के साथ जिक्र किया गया, होना तो यूं चाहिए था वालल अबी रिज़्क हुन्ना, बाप पर इनका औरतों का रिजक है, लेकिन कुरान में मुश्तक यानी मौलूद को जिक्र किया गया वालल मौलूदी लहू। तो जब मुश्तक पर हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिनहू होता है। मालूम हुआ ये जो औलाद है ये सबब है इन औरतों की यानी इन बच्चों की माओ के रिजक की। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि अगर वो मौलूद लहू जो है वो नाबालिग है और दूध पीता बच्चा है तो मां पर दूध पिलाना कजा अन वाजिब नहीं, यानी मां अगर दूध पिलाने से इनकार कर दे तो काजी भी जबरन उस पर दूध पिलाने को वाजिब नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये मां है इसकी शफकत सबसे ज्यादा है, फिर भी ये बच्चे को दूध नहीं पिला रही, मालूम है कोई उजर है भाई, तो लिहाजा इस पर काजी भी जबरन दूध पिलाने को वाजिब नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तुजारा वालिदतुम बिवलदिहा, कि मां को बच्चे की वजह से तकलीफ न दी जाए। और उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इसका माना यह है कि मां दूध न पिलाना चाहे और जबरन उस पर दूध पिलाने को वाजिब कर दिया जाए तो ये इस बच्चे की मां को तकलीफ देना है और इससे अल्लाह ने मना फरमाया है। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि ये जो हमने बयान किया ये हुक्म है, यानी कजाअन ये हुक्म है, अलबत्ता दयानतन इस औरत पर लाजिम है, चुनांचे अगर कोई और दूध पिलाने वाली न मिली या बच्चा किसी और औरत का दूध पीता ही नहीं है तो अब इस मां को मजबूर किया जाएगा दूध पिलाने पर ताकि कहीं बच्चा हलाक न हो जाए। फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जब मां बच्चे को दूध न पिलाए तो बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली का इंतजाम करना यह बाप के जिम्मे है, और उस औरत को जो उजरत देगा बाप यह बच्चे के नफके के दर्जे में है और यह बाप पर लाजिम है भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर अपनी बीवी अपने बच्चे को दूध पिलाने पर उजरत का मुतालबा करे या अपनी मुअतद्दा उजरत का मुतालबा करे तो उनके लिए यह जायज नहीं, क्योंकि यह शरान दूध पिलाना इन्हीं पर वाजिब है, जब यह इन्हीं की जिम्मेदारी है इन्हीं पर वाजिब है तो फिर उसकी उजरत यह कैसे ले सकती हैं। और फिर बतलाया था कि ये जो मुअतद्दा है वो भी उजरत नहीं ले सकती, तो इसमें मुअतद्दा रजईया जो है उसके बारे में तो एक ही रिवायत आई है हमारे अइमा से कि मुअतद्दा रजईया उजरत नहीं ले सकती क्योंकि निकाह पूरे तौर पर मौजूद है। और मुअतद्दा बाइना के अंदर दो रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक जो है कि ये उजरत ले सकती है, इसको उजरत पर बाप रख सकता है मुअतद्दा बाइना को क्योंकि निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, और जबकि दूसरी रिवायत है कि मुअतद्दा बाइना ये भी उजरत नहीं ले सकती क्योंकि निकाह पूरे तौर पर टूटा नहीं, अभी भी कुछ अहकाम निकाह के बाकी हैं इद्दत के दौरान। हां, जब इद्दत गुजर जाए फिर उसके बाद यह औरत उजरत ले सकती है, इसको यह शख्स उजरत पर रख सकता है क्योंकि यह अब अजनबिया बन चुकी है भाई। और अगर खावंद का एक बीवी से बच्चा है और दूसरी बीवी को वो उजरत पर रखता है तो उसको उजरत पर रख सकता है दूध पिलाने के लिए क्योंकि ये उस बच्चे की मां नहीं है, इस पर बच्चे को दूध पिलाना वाजिब नहीं, जब वाजिब नहीं है तो इस सूरत में ये दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। और साहिबे हिदाय ने यह भी बतलाया कि अगर खावंद और बीवी में जुदाई आ गई और खावंद किसी और औरत को उजरत पर रखता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, जबकि मां भी राजी है उतनी ही उजरत में दूध पिलाने पर, या मां बगैर उजरत के दूध पिलाने पर राजी है लेकिन खावंद कहते हैं नहीं मैं मां के हवाले बच्चे को नहीं करूंगा दूसरी औरत को ही रखूंगा, तो इस सूरत में खावंद का यह अमल दुरुस्त नहीं है, बच्चे की मां ज्यादा हकदार है, उसकी बच्चे पर शफकत ज्यादा है भाई, तो बच्चे को उसी के हवाले करना चाहिए। और हां, अगर उसने ज्यादा उजरत का मुतालबा किया उस मां ने तो इसको फिर खावंद पर लाजिम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें खावंद को तकलीफ देना है, और कुरान में जैसे मां को बच्चे की वजह से तकलीफ देने से मना किया गया है इसी तरह बच्चे की वजह से बाप को भी तकलीफ देने से मना किया गया है भाई। और फिर यह भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि नाबालिग औलाद का नफाका बाप पर वाजिब है अगरचे दीन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, बाप मुसलमान है लेकिन बच्चा मसलन अलियाजु बिल्लाह वो मुर्तद हो गया तो नाबालिग है और समझदार है वो मुर्तद हो गया, तो नाबालिग का मुसलमान होना या मुर्तद होना सही है और उसके जरिए वो इस्लाम या इर्तेदाद साबित हो जाता है, तो दीन मुख्तलिफ होने के बावजूद बाप पर उसका नफका वाजिब होगा भाई, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह अलल मौलूद लहू रिस्क होना, तो ये आयत मुतलक है, इसके अंदर यह जिक्र नहीं है कि बाप और बच्चे का एक ही दीन हो तो फिर नफका होगा, दीन अलग अलग हो तो नफका नहीं होगा, यह आयत मुतलक है और अल मुतलक यजरी अला इतलाकी ही, तो लिहाजा तमाम सूरतों में नाबालिग का नफका बाप के जिम्मे होगा भाई। और फिर आखिर में साहिब हिदाया ने एक निहायत कीमती जाब्ता जिक्र फरमाया कि ये जो बीवी का नफका होता है ये हर हाल में खावंद के जिम्मे है चाहे बीवी मालदार ही क्यों ना हो, जबकि अपनी नाबालिग औलाद का या अपने मां बाप का जो नफका इंसान पर आता है वो हाजत और जरूरत की वजह से आता है कि मां बाप और नाबालिग मोहताज हैं, तो जब वो मोहताज हों फिर उनका नफका आएगा इस आदमी पर, और अगर उनका अपना माल मौजूद है तो उनके अपने माल में से ही नफका होगा, किसी और पर उनका नफका वाजिब नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन व अलर रजुल अन्युन्फिका अला अबवैही व अजदादिही व जद्दातिही इदा कानू फुकरा अव इन खालफूहु फी दीनिही अम्मल अबवानि फलिकौलिहि तआला वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा नज़लतिल आयतु फिल अबवैनिल काफिरैन। भाई, गुज़श्ता सबक के आखिर में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि नाबालिग औलाद का दीन चाहे बाप से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो फिर भी उसका नफका बाप पर आएगा। अब आगे बयान फरमा रहे हैं कि यही हुक्म है मां बाप का भी और ऊपर अजदाद और जद्दाद का भी। भाई, एक शख्स है उसका दीन अलग है और उसके मां बाप या इसी तरह उसके दादा दादी वगैरह और नाना नानी वगैरह ऊपर तक इनका दीन चाहे अलग ही क्यों ना हो फिर भी इनका नफका इस शख्स पर है। याद रखो भाई, आगे चलकर आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि बीवी का दीन चाहे अलग हो फिर भी खावंद के जिम्मे उसका नफका है। नाबालिग औलाद का बतला दिया कि नाबालिग औलाद का दीन अलग हो फिर भी नफका बाप के जिम्मे है, और यही हुक्म है अपने मां बाप का और ऊपर अपने दादा नाना वगैरह या दादी नानी वगैरह ऊपर तक, मसलन दादा है परदादा है उससे ऊपर हो, या दादी है परदादी है इससे ऊपर हो, या इधर नाना नानी ऊपर तक, भाई इन सब का नफका भी चाहे इनका दीन अलग ही क्यों ना हो फिर भी अगर ये तंग दस्त हैं फकीर हैं तो इनका नफका इस शख्स पर वाजिब होगा। भाई तो कहते हैं वाला रजुली अयुन फिकाला अबवई ही व अजदादी ही व जद्दाती ही इदाकानू फुकारा, और आदमी पर वाजिब है कि वो खर्च करे अला अबवई ही अपने मां बाप पर व अजदादी ही और अपने अजदाद पर। मैंने बतलाया था आपको कि उर्दू में तो बाप के बाप को दादा कहते हैं और मां के बाप को नाना कहते हैं, लेकिन अरबी में दोनों के लिए एक ही लफ्ज है जद का, और सिर्फ दादा या नाना नहीं बल्कि दादा से ऊपर पर दादा है या लकड़ दादा है, या इसी तरह नाना से ऊपर पर नाना है या लकड़ नाना है, ये सारे अजदाद कहलाते हैं भाई। और इसी तरह जद्दाद भी हैं भाई, जितनी औरतें हैं ऊपर की तरफ हमारे वो सब जद्दाद कहलाती हैं। तो चाहे मां बाप का दीन अलग हो चाहे अजदाद और जद्दाद का दीन अलग हो, लेकिन जब वो फुकारा हैं मोहताज हैं गरीब हैं तो इस शख्स पर अगर ये मालदार है तो इस पर इन सब का नफका आएगा भाई। तो कहते हैं वाला रजुली अयुन फिका अला अबवई ही, और आदमी पर वाजिब है कि वो खर्च करे अपने मां बाप पर व अजदादी ही और अपने अजदाद पर, यानी अपने दादों नानों पर, व जद्दाती ही और अपनी दादियों नानियों पर, इदा कानू फुकारा जब ये फकीर हों। साहिब हिदाया ने जाब्ता बतला दिया था कि सिर्फ बीवी का नफका एहतिबास की वजह से होता है और बाकी सबका नफका तो हाजत की वजह से है, जब उनको हाजत होगी यानी फुकारा होंगे फिर नफका आएगा, वैसे नफका इनका इस आदमी पर वाजिब नहीं है भाई। ये माना है इदा कानू फुकारा अजब ये फकीर हों, व इन खालफू फी दीन ही, अगरचे ये उस आदमी के मुखालिफ हों दीन के अंदर। अब हर एक की दलील जिक्र करेंगे, कहते अम्मल अबावानी, तो मां बाप जो हैं फली कौल ही ताला व अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, और इन वालिदैन के साथ रहो फिद दुनिया दुनिया में मारूफन अच्छे तरीके से, और तुम वालिदैन के साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहो। नज़लतिल आयतु फिल अबवैनिल काफिरैनी, ये आयत नाजिल हुई काफिर मां बाप के बारे में। भाई ये आयत नाजिल हुई हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ये इस्लाम ले आए थे और वालिदैन मुसलमान नहीं थे और वो मुखालिफत कर रहे थे इनकी, हत्ता कि इनकी मां ने खाना पीना ही छोड़ दिया कि जब तक तुम ये नए दीन को नहीं छोड़ोगे अपने पुराने दीन पर नहीं आओगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इस मौका पर फिर अल्लाह की तरफ से ये आयत नाजिल हुई भाई। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं भाई सूरह लुकमान के अंदर, व इन जाहदा का अला अंतुश्री कभी, व इन जाहदा का, देखो तस्निया का सीगा है, व इन जाहदा का, और अगर ये मां बाप तुम पर जोर डालें, अला अंतुश्री कभी इस बात पर कि तुम मेरे साथ शरीक बनाओ, मां लैसा लका बिही इल्मुन, उस चीज को जिसका तुम्हारे पास इलम नहीं, अगर मां बाप तुम पर जोर डालें कि तुम मेरा शरीक बनाओ उस चीज का जिसका तुम्हारे पास इलम नहीं, इलम से मुराद है दलील भाई, यानी एक चीज को तुम मेरा शरीक बनाओ और तुम्हारे पास उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, फला तो तेहुमा, तो इनकी इताअत न करना, वह साहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, और इनके साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहो। तो अल्लाह ताला ने हर मकाम पर वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, लेकिन जब वो गुनाह का हुक्म दे रहे हों, वो शिर्क का हुक्म दे रहे हों, तो अल्लाह फरमाते हैं इनकी इताअत न करो। लेकिन इताअत न करने का यह माना नहीं है कि इनको तकलीफ दो, इनको अगर इनकार भी करना है इनकी बात नहीं भी माननी तो अच्छे तरीके से कि इनको तकलीफ ना हो, तो मां मजबूर कर रही थी हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि ये जो तुम इस्लाम लेकर आए हो इस दीन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, और उन्होंने खाना पीना तर्क कर दिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने ये दीन ना छोड़ा। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं, जब ये गुनाह का हुक्म दें, शिर्क का हुक्म दें, तो इनका हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी बात रद्द भी करो तो अच्छे तरीके से रद्द करो कि इनको तकलीफ ना हो। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अम्मल अबावानी, तो मां बाप जो हैं फली कौली ही ताला व अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वसाहिब हुमा फि दुनिया मारूफा, और मां बाप के साथ रहो दुनिया में अच्छे तरीके से। नजलतिल आयतु फिल अबावैनिल काफिरैनी, ये आयत नाजिल हुई काफिर मां बाप के बारे में। तो ये आयत काफिर मां बाप के बारे में नाजिल हुई। वलैसा मिनल मारूफी अन यईशा फी, और साहिब हिदायत फरमाते हैं कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया, चाहे मुशरिक ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह ने उनके साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया। और बेटा खुद मालदार है और मां बाप को भूखा मरने के लिए छोड़ दे, ये नेकी नहीं है। मालूम हुआ कि मां बाप काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी नफका बेटे को देना पड़ेगा अगर वो फकीर हैं। तो कहते हैं वलैसा मिनल मारूफी, और ये बात नेकी में से नहीं है, अय्याईशा फी निअमिल्लाहि ताला, कि बेटा खुद तो अल्लाह की नियामतों में जिंदगी गुजारे, वयतरुकहुमा यमूतानि जुआ, और इन दोनों को छोड़ दे भूख से मरने के लिए। व अम्मल अजदाद वल जद्दातु, अब बाकी अजदाद और जद्दात, भाई ऊपर मतन में आया था कि मां बाप का नफका भी बेटे के जिम्मे चाहे काफिर ही क्यों ना हो जब ये फुकरा हो, और अजदाद और जद्दाद का नफका भी औलाद के जिम्मे चाहे ये काफिर ही क्यों ना हो, तो अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह अम्मल अजदाद वल जद्दातु, और बाकी अजदाद और जद्दाद जो हैं, फली अन्नहुम मिनल आबा इवल उम्महाती, तो इसलिए क्योंकि ये भी आबा और उम्महात में से हैं। भाई याद रखो, ऊपर की तरफ जो हमारे अजदाद हैं, दादा पर दादा ऊपर तक, या नाना पर नाना ऊपर तक, तो याद रखो ये सब हमारे आबा हैं, ये हमारे बाप के दर्जे में हैं, अगरचे दरमियान में वासिता आ रहा है। जो बाप है वो तो बगैर वास्ते के बाप है, लेकिन ये जो दादा पर दादा हैं या नाना पर नाना हैं, ये भी हमारे बाप ही हैं, आबा में से ही हैं, अगरचे दरमियान में वासिता आ रहा है। और इसी तरह जो दादियां और नानियां हैं, ये सब भी हमारी माएं हैं, अगरचे दरमियान में वासिता आ रहा है। तो जब मां बाप का नफका औलाद पर है, तो ऊपर जो अजदाद और जद्दात हैं, ये भी आबा और उम्महात में से हैं, तो इनका नफका भी इसी शख्स पर आएगा जब ये फकीर हों। भाई तो कहते हैं वह अम्मल अजदाद वल जद्दात, और बाकी अजदाद और जद्दात जो हैं, फली अन्नहुम मिनल आबा इवल उम्महाती, तो इसलिए क्योंकि ये भी आबा और उम्महात में से हैं। वलिहादा यकूमुल जद्दु मकामल अबी इंदा अदमी ही, और इसीलिए दादा जो है वो बाप का कायम मकाम हो जाता है, इंदा अदमी ही, जब बाप ना हो। भाई आप पढ़ चुके हैं कि बाप को सगीर और सगीरा पर विलायत हासिल है, जहां चाहे इनका निकाह करवा सकता है, और बाप अगर ना हो तो यही विलायत किसको हासिल है, दादा को हासिल है। तो देखो बाप के न होने की सूरत में दादा उसका कायम मकाम बन गया इस विलायत में। या इसी तरह वरासत के मसले में कि अगर बाप ना हो तो फिर दादा उसके कायम मकाम हो जाता है, वही हिस्सा अब दादा को मिलेगा जो पहले बाप को मिल रहा था। भाई और नीज इसी तरह बाप को नाबालिग औलाद के माल में तसर्रुफ का हक होता है, और रिश्तेदारों को तो नाबालिग के माल में तसर्रुफ का हक नहीं है, लेकिन बाप को नाबालिग औलाद के माल में तसर्रुफ का हक है। और अगर बाप ना हो तो यही तसर्रुफ का हक फिर दादा को मिल जाता है, दादा नाबालिग औलाद के माल में तसर्रुफ कर सकता है। तो कहते हैं वलिहादा यकूमुल जद्दु मकामल अबी इंदा अदमिही, और इसीलिए जो दादा है वो बाप के कायम मकाम हो जाता है जब बाप ना हो। वली अन्नहुम सब्बबू लिइहयाईही, सब्बब युसब्बिबु तस्बीब का माना है सबब बनना, जरिया बनना, और इहया का माना है जिंदगी देना, किसी को जिंदा कर देना। वली अन्नहुम सबबु लिइहयाइही, और नीज इसलिए क्योंकि ये अजदाद जद्दात जो हैं, ये अजदाद और जद्दात जो हैं, सबबु लिइहयाइही, ये सबब और जरिया बने हैं इस आदमी को जिंदगी देने का, इस आदमी को जिंदगी देने का सबब बने हैं, इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाले अजदाद और जद्दात न होती तो इसके मां बाप भी ना होते, और इसके मां बाप ना होते तो ये शख्स भी ना होता। भाई मालूम हुआ अजदाद और जद्दात वो इस शख्स की जिंदगी का सबब बने हैं। तो जब ये जिंदगी का सबब बने हैं तो अब इस औलाद पर भी वाजिब है कि वो इनको जिंदगी दे, यानी ये फकीर हैं तो इन पर खर्चा करे। जिस तरह मां बाप जो हैं, मां बाप अपनी औलाद की जिंदगी का सबब बने हैं, मां बाप इनको जिंदगी देने वाले हैं, लिहाजा अब बच्चे के जिम्मे भी वाजिब है कि मां बाप को जिंदगी दे, यानी अगर वो फकीर हैं तो उन पर खर्च करे। भाई तो इसी तरह यही हुक्म किसका होगा? अजदाद और जद्दाद का भी। तो कहते हैं वली अन्नहुम सबबु लिइहयाइही, और इसलिए क्योंकि अजदाद और जद्दाद जो हैं ये सबब और जरिया बने हैं इस आदमी को जिंदगी देने का। फस्तौजबु अलैहिल इहया अबिमंजिलतिल अबवैनी, इस्तौजब यस्तौजिबु इस्तिजाब का माना है मुस्तहिक होना। फस्तौजबु अलैही, तो ये अजदाद और जद्दाद जो हैं ये मुस्तहिक हैं अल इहया जिंदगी देने के, ये भी मुस्तहिक हैं कि ये औलाद इनको जिंदगी दे। भाई भी मंजिलतिल अबवैनी, मां बाप के दर्जे में, जैसे मां बाप के जिंदगी देना वाजिब है क्योंकि उन्होंने भी अपनी औलाद को जिंदगी दी है, तो इसी तरह ये अजदाद और जद्दाद भी हैं। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं बली अन्नहुम सबबु लिइहयाइही, और इसलिए क्योंकि अजदाद और जद्दाद ये सबब और जरिया बने हैं इस आदमी को जिंदगी देने का। फस्तौजबु अलैहिल इहया अबिमंजिलतिल अबवैनी, तो ये भी मुस्तहिक हैं उस आदमी पर जिंदगी देने के, बिमंजिलतिल अबवैनी, मां बाप के दर्जे में। वशरतल फकरा, भाई ऊपर मतन में आया था कि इन सब का नफका आदमी पर वाजिब है इजा कानू फुकारा, जब ये फकीर हों, तो उसकी वजह आप जिक्र कर रहे हैं कि ये फकीर होने की शर्त क्यों लगाई साहिब कुदूरी ने मतन के अंदर। भाई तो कहते हैं वशरतल फकरा, और साहिब कुदूरी ने फकीर होने की शर्त लगाई, लिअन्नहु लौका नजा मालिन, इसलिए क्योंकि बाप अगर माल वाला है, फईजाबुन नफकतिही फी मालिही औला, तो नफके को वाजिब करना उसके अपने माल में औला ये ज्यादा लायक है, मिन ईजाबिहा फी माली गैरिही, गैर के माल में उस नफके को वाजिब करने के मुकाबले में। एक तो यह है कि बाप का नफका उसके अपने माल में वाजिब किया जाए, और एक ये सूरत है कि बाप का नफका औलाद के माल में वाजिब किया जाए। तो जब बाप का अपना माल मौजूद है तो उसके अपने माल में से नफका वाजिब करना यह बेहतर है इसके मुकाबले में कि यह नफका औलाद के माल में वाजिब किया जाए। तो कहते हैं लिअन्नहु लौका नज़ा मालिन, इसलिए क्योंकि बाप जो है अगर वो माल वाला है, फईजाबु नफकतिही फी मालिही, तो बाप के नफके को उसके अपने माल में से वाजिब करना औला ये बेहतर है, मिन ईजाबिहा फी माली गैरिही, गैर के माल में इसको वाजिब करने के मुकाबले में। वला युम्नउ ज़ालिका बिख्तिलाफि दीन लिमा तलौना, वला युम्नउ ज़ालिका, और इसको मना नहीं किया जाएगा, यानी ये ममनू नहीं होगा, बिख्तिलाफ दीन दीन के मुख्तलिफ होने की वजह से, ये नफके का वाजिब होना ये ममनू नहीं होगा दीन के मुख्तलिफ होने की वजह से। लिमा तलौना, उस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की। वही वसाहिब हुमा फि दुनिया मारूफा, वहां तो देखो मुशरिक वालिदैन ही का जिक्र चल रहा है और उनके बारे में भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके साथ अच्छा सुलूक करो। तो कहते हैं वला युम्नउ ज़ालिका बिख्तिलाफ दीन लिमा तलौना, और ये ममनू नहीं होगा, यानी नफके का वाजिब होना ममनू नहीं होगा दीन के मुख्तलिफ होने की वजह से। लिमा तलौना, उस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की। आगे देखिए वला तजिबुन नफकतु मा इख्तिलाफि दीन इल्ला लिज़्ज़ौजति वल अबवैनि वल अजदादि वल जद्दाति वल वलदि व वलदिल वलद, अब वो अफराद जिक्र फरमा रहे हैं जिनका नफका इख्तिलाफ दीन के बावजूद एक आदमी पर वाजिब होगा। मैंने बतला दिया पहले ही कि अपनी औलाद का नफका, ये यूं कहो मुख्तसर लफ्जों में, अपने उसूल का नफका और अपने फुरू का नफका, और इसी तरह अपनी बीवी का नफका, बीवी, उसूल और फुरू। उसूल में ऊपर वाले सब आ गए, मां बाप आ गए, दादा दादी, परदादा परदादी आ गए, इसी तरह नाना नानी, पर नाना पर नानी, ये सब उसूल आ गए। और औलाद के अंदर अपने बेटा बेटी वगैरह आ गए और नीचे औलाद आ गई भाई। तो कहते हैं वला तजिबुन नफकतु मा इख्तिलाफी दीनी, और दीन के इख्तिलाफ के साथ नफका वाजिब नहीं होता, इल्ला लिज़ौजती, मगर बीवी के लिए, वल अबवाइनी, और मां बाप के लिए, वल अजदादी, वल जद्दाती, और अजदाद और जद्दाद के लिए, वल वलदी, और औलाद के लिए, वलदिल वलदी, और औलाद की औलाद के लिए, औलाद की औलाद के लिए, यानी बीवी और उसूल और फुरू। यहां चाहे दीन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, फिर भी नफका देना पड़ेगा जब ये फकीर हो, मोहताज हो। और बीवी, बीवी तो चाहे मालदार ही क्यों ना हो, जब एहतिबास मौजूद है तो नफका देना पड़ेगा। अम मज़ौजतु, तो बीवी जो है, फलीमा जकर ना अन्नहा वाजिबतुन लहा बिल अक्दी, तो उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि ये जो नफका है ये वाजिब होता है उस लहा, इस बीवी के लिए, बिल अक्दी, अक्द की वजह से, खावंद ने इसके साथ निकाह किया है भाई, तो इस निकाह की वजह से खावंद पर यह नफका लाजिम हो गई। खावंद ने अपनी मर्जी से निकाह किया है तो गोया इसने अपनी मर्जी से अपने ऊपर नफका वाजिब किया है। तो कहते हैं अम मज़ौजतु, तो बीवी जो है, फलीमा ज़करना, तो उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि अन्नहा वाजिबतुन लहा बिल अक़दी, कि इस बीवी के लिए नफका वाजिब है अक़द निकाह की वजह से, लिहतिबासिहा लिहक़्किन लहू मक़सूदिन, लिहतिबासिहा, इस औरत के एहतिबास की वजह से, इस बीवी के एहतिबास की वजह से, लिहक़्किन, एक ऐसे हक में, लहू मक़सूदिन, जो इस आदमी का मकसूद है। औरत क्या करती है, अपने आप को घर में रोक कर रखती है खावंद के लिए कि खावंद जब चाहे उससे सोहबत कर सके। तो औरत ने अपने आप को रोका हुआ है एक ऐसे हक में जो खावंद का मकसूद है, लिहाजा नफका भी किसके जिम्मे होगा, खावंद के जिम्मे होगा। तो कहते हैं लिहतिबासिहा लिहक़्किन लहू मक़सूदिन, बवजह इस औरत के अपने आप को रोकने के एक ऐसे हक की वजह से जो खावंद का मकसूद है। वहां दाला यतअल्लक़ु बित्तिहादिल मिल्लति, मिल्लत कहते हैं दीन को, मिल्लत का क्या माना, दीन। तो कहते हैं वहादा ला यतअल्लक़ु बित्तिहादिल मिल्लति, और ये जो अक़द की वजह से वाजिब हुआ है इसका ताल्लुक दीन के एक होने से नहीं है। ये तो खुद उसने अकद करके अपने ऊपर लाजिम किया है, एक औरत से निकाह कर रहा है, मुसलमान है, और यहूदी या ईसाई औरत से निकाह कर रहा है, मालूम हो वो खुद अपने ऊपर उसके नफके को लाजिम कर रहा है, तो फिर इसमें दीन का एक होना शर्त नहीं है। ये माना है वह हादा ला यतअल्लक़ु बित्तिहादिल मिल्लति, और जो चीज अकद की वजह से वाजिब हो उसका ताल्लुक दीन के एक होने से नहीं होता। वह अम्मा गैरुहा, और बाकी बीवी के अलावा जो रिश्तेदार हैं, मतन में किसका जिक्र आया था, बीवी का भी, और ऊपर सारे उसूल का भी, मां बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह का भी, और नीचे औलाद और औलाद की औलाद का भी जिक्र आया था, तो अब उनका जिक्र फरमा रहे हैं। कहते हैं वह अम्मा गैरुहा, और बाकी बीवी के अलावा जो और रिश्तेदार हैं, यानी जो उसूल और फुरू हैं, फली अनल जुज़ियत साबितुन, इसलिए क्योंकि जुज होना साबित है, ये सब एक दूसरे के जुज हैं, ये सब क्या हैं, एक दूसरे के जुज हैं। किस तरह, बेटा बाप का जुज होता है, बेटा बाप का जुज है, जब बेटा बाप का जुज है तो बाप बेटे का जुज हुआ, जब बेटा बाप का जुज है तो बाप बेटे का जुज हुआ, भाई दोनों एक दूसरे के जुज हैं भाई, तो इन सब में कौन सा रिश्ता है, ये बेटा बाप दादा परदादा वगैरह, इन सब में जुजियत वाला रिश्ता है, ये सब एक दूसरे के जुज हैं भाई। कहते हैं वह अम्मा गैरुहा, और बीवी के अलावा जो उसूल और फुरू हैं, फली अन्नल जुजियत साबितुन, तो उनका नफका इसलिए होगा क्योंकि जुज होना साबित है। वह जुज उलमर इफी माना नफसी ही, और आदमी का जुज जो होता है वह उसकी अपनी जात के दर्जे में होता है, किस दर्जे में है, अपनी जात, और इंसान चाहे काफिर ही क्यों ना हो फिर भी उसका नफका अपनी ही जात पर आता है। तो जिस तरह कुफर अपने नफके के अंदर मुअसिर नहीं, चाहे आदमी काफिर ही क्यों ना हो, नफका किस पर है, अपनी ही जात पर है, तो इसी तरह उसका जुज काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी उसका नफका इसी आदमी पर होगा क्योंकि वो इसी का जुज है भाई। तो कहते हैं वह जुज उल मर इफी माना नफसी ही, और आदमी का जो जुज होता है वो उसकी अपनी जात के दर्जे में होता है, अपनी जात के माना में होता है। फकमा लायम तनियो न फकतु नफसी ही बिकुफरी ही लायम तनियो न फकतु जुज ही, तो जिस तरह आदमी का अपना नफका ममनू नहीं होता बिकुफरी ही अपने कुफर की वजह से, तो लायम तनियो न फकतु जुज ही, तो इसी तरह इसके जुज का नफका भी ममनू नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तर्जमा फिर देख लीजिए। फकमा लायम तनियो नफकत नफसी ही बिकुफरी ही, तो जिस तरह अपनी जात का नफका वो ममनू नहीं होता अपने कुफर की वजह से, तो लायम तनियो नफकत जुज ही, तो इसी तरह अपने जुज का नफका भी मुमतने नहीं होगा कुफर की वजह से। इल्ला अन्नहुम इदा कानू हर्बियीन ला तजिबु नफकतुहुम अलल मुस्लिमी व इन कानू मुस्तअमिनीन। भाई ये जो मसला साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया कि अपनी बीवी या अपने मां बाप और अजदाद या अपनी औलाद और औलाद की औलाद अगर ये फकीर हैं तो इनका नफका इसी आदमी पर होगा चाहे दीन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। याद रखो ये हुक्म जिम्मियों के बारे में है। आप जानते हैं वो गैर मुस्लिम जब ममलिकत इस्लामिया के अंदर रहते हैं और सालाना जिजिया अदा करते हैं, सालाना टैक्स अदा करते हैं, इनको जिम्मी कहते हैं। और जो दारुल हर्ब में रहते हैं यानी ऐसे मुल्क में जिनके साथ हम हालत जंग में हैं भाई, उनको हर्बी कहा जाता है। और फिर कभी उन हर्बियों में से कोई शख्स अमान लेकर हमारे वतन में आता है उसको मुस्तअमिन कहते हैं, यानी अमान लेने वाला, अमान तलब करने वाला। या हम में से कोई शख्स अमान लेकर उनके मुल्क में जाता है तो वो भी मुस्तअमिन है भाई। तो याद रखो ये जो हुक्म बयान फरमाया कि दीन मुख्तलिफ हो फिर भी इन अफराद का नफका आदमी पर आएगा, ये जिम्मियों के बारे में है। अगर ये रिश्तेदार हर्बी हैं, आदमी के मां बाप दारुल हर्ब में रहते हैं और ये मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में आ गया, या इस आदमी की औलाद और औलाद की औलाद दारुल हर्ब में रहती है और ये मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में आ गया और इसके पास माल आ गया और वो सारे फुकारा हैं, तो अब इस पर उनका नफका वाजिब नहीं होगा। वो जो इसके रिश्तेदार दारुल हर्ब में रहते हैं, मां बाप हैं या दादा दादी नाना नानी वगैरह हैं, या इसकी औलाद है या औलाद की औलाद है लेकिन रहते कहां हैं, दारुल हर्ब में, फिर इनका नफका इस आदमी पर नहीं है भाई। वजह यह कि ये लोग हमारे साथ दीन के मामले में जंग करने वाले हैं, और जो लोग हमारे साथ दीन के मामले में जंग करने वाले हों उनका नफका इंसान पर वाजिब नहीं होता। और इसके मां बाप और औलाद चाहे वो जंग करें या ना करें लेकिन हैं तो उन्हीं के साथ भाई, उन्हीं की जानिब में हैं, गोया उन्हीं के मददगार हैं, तो लिहाजा इनका नफका भी अब इंसान पर वाजिब नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहुम इज़ा कानू हर्बियीना, मगर ये कि जब ये वाले रिश्तेदार जो हैं ये हर्बी हों तो ला तजिबु नफकतुहुम अलल मुस्लिमी, तो इनका नफका मुसलमान पर वाजिब नहीं होगा। व इन कानू मुस्तअमिनीना, अगरचे ये मुस्तअमिन हो यानी अमान लेकर यहां आ जाए, वो हर्बी अमान लेकर यहां आ गए फिर भी इनका नफका आदमी पर वाजिब नहीं क्योंकि इसने फिर वापस जाना है उधर भाई, तो ये गोया उन्हीं के मुआविन हैं भाई। अब दलील जिक्र कर रहे हैं कि इनका नफका क्यों नहीं होगा जब ये हर्बी हो। कहते हैं लिअन्ना नुहीना अनिल बिर्री, इसलिए क्योंकि हमें मना किया गया है। लिअन्ना नुहीना, हमें मना किया गया है अनिल बिर्री, नेकी करने से, फी हक मन युकातिलुना फी दीनी, उनके हक में जो हमसे दीन के मामले में लड़ाई करते हैं। हमें मना किया गया है उन लोगों के हक में नेकी करने से जो हमारे साथ दीन के मामले में लड़ाई करते हैं। ये मेरे हाशिए में आयत दी हुई है भाई, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लदीन कातलूकुम फिद्दीनी, मिल गई आयत। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु, कि अल्लाह तो तुम्हें रोकता है अनिल्लदीन, उन्हीं लोगों से, कातलूकुम फिद्दीनी, जिन्होंने तुमसे दीन में लड़ाई की, व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें निकाला तुम्हारे घरों से, व जाहरू अला इखराजिकुम, और जिन्होंने मदद की तुम्हारे निकालने में, जिन्होंने तुम्हें निकाला और निकालने में मदद की, उनसे अल्लाह मना करता है, अंतवल्लौहुम, कि तुम उनसे दोस्ती करो। यह मफूल आ गया भाई, आयत के शुरू में आया था इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें मना करते हैं। भाई किस चीज से मना करते हैं? अंतवल्लौहुम, कि तुम इन लोगों से दोस्ती करो, ये जिन्होंने तुम्हें वतन से निकाला है और दीन के मामले में तुमसे लड़ाई की है। भाई वह मैं यतवल्लहुम, और जो इनसे दोस्ती करेगा, फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो वही लोग जालिम हैं। भाई मालूम हुआ अल्लाह ने इन हरबियों के साथ नेकी करने से मना फरमाया है, लिहाजा ये रिश्तेदार अगर दारुल हर्ब वाले हैं तो इनका नफका आदमी पर नहीं होगा। तर्जमा समझ में आया? तो ये माना है लिअन्ना नुहीना अनिल बिर्री, इसलिए क्योंकि हमें नेकी से मना किया गया है, फी हक मन युकातिलुना फी दीनी, उन लोगों के हक में जो हमसे दीन के मामले में लड़ाई करते हैं। आगे देखिए वला तजिबु अलन नसरानी नफकत अखीहिल मुस्लिमी, वकदा ला तजिबु अलल मुस्लिमी नफकत अखीहिन नसरानी। भाई अब उसी की मजीद वजाहत कर रहे हैं, जाब्ता आपको पीछे बतला दिया कि दीन मुख्तलिफ हो फिर भी बीवी का नफका, मां बाप का नफका, अजदाद और जद्दाद का नफका, और औलाद की औलाद का नफका आदमी पर वाजिब होता है। तो अब एक शख्स मुसलमान है लेकिन उसका भाई मुसलमान नहीं है और वो फकीर है, मोहताज है, गरीब है, चाहे जिम्मी ही क्यों ना हो, अब इस काफिर भाई का नफका मुसलमान के जिम्मे नहीं है। और इसी तरह इसके बरअक्स भी है, यानी अगर मुसलमान भाई जो है वो फकीर और मोहताज है और उसका जिम्मी भाई जो है मालदार है, तो जिम्मी पर इस मुसलमान भाई का नफका वाजिब नहीं होगा। भाई वजह यह कि आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि ये जो नफका है इसका ताल्लुक वरासत से है, नफके का ताल्लुक वरासत से है, और नस से यह बात साबित होती है। कुरान में अल्लाह जहां फरमाते हैं वह अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, इसी आयत के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं वह अलल वारिसी मिसलु ज़ालिक, और वारिस पर भी इसी के मिसल है, यानी वारिस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है। भाई कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं वह अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, के बाप पर इन औरतों का नफका है, और इसी से पता चल गया बच्चे का नफका भी बाप के जिम्मे है। और इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं वह अलल वारिसी मिसलु ज़ालिका, और वारिस पर भी इसी के मिसल है, यानी ये नफके की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। ये उस सूरत में है जब बाप नहीं है, एक नाबालिग बच्चा है और उसका बाप जिंदा नहीं है और वो फकीर है, मोहताज है, भाई उनके पास माल नहीं, तो अब उस बच्चे के जो वारिस बनेंगे, अगर बच्चे का माल होता और बच्चे का इंतकाल हो जाए तो जो जो उसके वारिस बनेंगे अब वो नफका उन पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये माना है वालल वारिसी मिसलु ज़ालिका, और वारिस पर भी इसी के बराबर है, इसी के मिसल है, यानी बाप की तरह वारिसों पर भी नफका वाजिब है। भाई और यहां पर भी देख लीजिए हुक्म लगाया जा रहा है मुश्तक पर, अलल वारिसी, वारिस इसमें फाइल है, तो इसमें फाइल पर हुक्म लगाया जा रहा है कि उसकी भी इसी तरह जिम्मेदारी है। मालूम हुआ इसकी इल्लत मुश्तक मिनहू है, यानी वरासत है। तो मालूम हुआ वरासत में जिसका जितना हक बनता है उसी के बकदर उस शख्स पर नफका भी वाजिब होगा। भाई और नीज आयत के शुरू में था वह अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, और यहां पर आया वह अलल वारिसी मिसलु ज़ालिका। ज़ालिका आपने पढ़ा है इशारा होता है बईद के लिए, और वारिस पर भी इसी के मिसल है। भाई किसके मिसल? ये ज़ालिका के जरिए इशारा है आयत के शुरू की तरफ, यानी वो जो दूर पीछे बात गुजर गई थी उसकी तरफ इशारा है कि वारिस पर भी इसी के मिसल है, यानी अगर बाप नहीं है तो फिर वारिसों को अपने हिस्से के बकदर बच्चे पर खर्च करना पड़ेगा। तो मालूम हुआ नफके का ताल्लुक वरासत से है, जब एक शख्स दूसरे का वारिस बन रहा है तो उस पर नफका भी आएगा। भाई लेकिन अगर एक भाई मुसलमान है और दूसरा काफिर है तो दोनों का दीन ही अलग अलग है, ये तो दोनों एक दूसरे के वारिस ही नहीं बन सकते। जब इख्तलाफ दीन की वजह से वारिस नहीं बन सकते तो लिहाजा आप एक दूसरे पर नफका भी वाजिब नहीं होगा। तो कहते हैं वला तजिबु अला नसरानी ये नफकत अखील मुस्लिमी, नसरानी कहते हैं ईसाई को भाई, वला तजिबु अला नसरानी ये और ईसाई पर वाजिब नहीं है नफकत अखील मुस्लिमी अपने मुसलमान भाई का नफका, वकदा ला तजिबु अला मुस्लिमी नफकत अखील नसरानी ये और इसी तरह मुसलमान पर अपने ईसाई भाई का नफका वाजिब नहीं है, लिअन्ना नफकत मुतअल्लिकतुम बिल इर्सी, इसलिए क्योंकि नफका जो है इसका ताल्लुक वरा से है बिन नस, नस की वजह से, कि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिका, के वारिस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है भाई। बखिलाफ इल्तक इंदल मिल की, बखिलाफ आजादी के इंदल मिल की मिल्कियत के वक्त भाई, देखिए साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया कि जब करीबी रिश्तेदार का दीन अलग हो, मसलन भाई या बहन का दीन अलग है, तो उनका नफका एक दूसरे पर वाजिब नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स अपने किसी करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है तो जिस लम्हे में मालिक बनेगा उससे अगले लम्हे में ही वो आजाद हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं हदीस के अंदर आता है मन मलका जार रहिमी महरमी मिन हो, कि जो शख्स अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना अतका अलैही तो उस पर आजाद हो जाएगा, आजाद करना नहीं पड़ेगा, फौरन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। एक शख्स है उसका भाई गुलाम है, यह भी गुलाम था लेकिन मसलन इसको आका ने आजाद कर दिया था और यह फिर मालदार हो गया, इसका भाई भी गुलाम है, यह अपने भाई को खरीदता है, जिस लम्हे के अंदर खरीदेगा अगले ही लम्हे के अंदर वो आजाद हो जाएगा खुद ब खुद भाई, क्योंकि हदीस में क्या आता है मन मलका जारा हमी महरमी मिन हो, जो अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है आताका अलैही तो वो उस पर आजाद हो जाता है, या बाद रिवायत में आता है फहुआ हुर्रुन तो वो आजाद है भाई। तो यहां पर दो कैदे हैं, मन मलका जारा हिम यानी रिश्तेदार भी हो और महरमी मिन हो और उसका महरम भी हो भाई। तो जब भी करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, जैसे ही इंसान उसका मालिक बनेगा वो फौरन आजाद हो जाएगा। तो बात ये चल रही थी, साहिब हिदाया ने बतलाया कि भाइयों का नफका एक दूसरे पर नहीं आएगा अगर इनका दीन अलग है, लेकिन अगर दीन अलग ही क्यों ना हो फिर भी एक भाई दूसरे को खरीदेगा तो वो फौरन आजाद हो जाएगा जी। वो फौरन आजाद हो जाएगा, यहां इख्तिलाफ दीन को नहीं देखा जाता, वो फौरन क्या हो जाएगा आजाद। एक मुसलमान अपने काफिर गुलाम भाई को खरीदता है तो दीन बेशक अलग है लेकिन खरीदते साथ ही वो आजाद हो जाएगा। तो अब ये दोनों में फर्क क्यों किया गया, दीन अलग हो तो नफका वाजिब नहीं होता लेकिन दीन चाहे अलग ही क्यों ना हो फिर भी उसका मालिक बनते ही वो आजाद हो जाएगा, तो इन दोनों में फर्क क्यों किया गया, अब उसकी वजह बयान फरमा रहे हैं। फिर देखिए तर्जमा कहते हैं नफकत मुतअल्लिकतुम बिल इर्सी बिन नस्सी, इसलिए क्योंकि नफके का ताल्लुक वरासत से होता है नस की वजह से, बिखिलाफिल इत्क इंदल मिल की बखिलाफ आजाद होने के मालिक होते वक्त, मालिक होते वक्त आजाद होने के, लिअन्नहु मुतअल्लिकुम बिल क़राबती वल महरमियती, इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक बिल क़राबती रिश्तेदारी से है, वल महरमियती और महरम होने से है, बिल हदीसी हदीस की वजह से, किसकी वजह से हदीस में आया है मन मलका ज़ा रहमी महरमी मिन हो अतका अलैही, इसके अंदर कोई दीन के इख्तिलाफ को जिक्र नहीं किया गया, बस दो चीजें होनी चाहिए, क्या कराबत और महरम होना चाहिए, यहां इख्तिलाफ दीन जिक्र नहीं है। जबकि नफका जो है उसका ताल्लुक वरासत से है भाई, वारिस बन रहा है तो नफका भी आएगा, वारिस नहीं बन रहा दीन मुख्तलिफ है तो नफका भी नहीं आएगा। तो कहते हैं बेखिलाफ इल्इत्क इंदल मिल्की, बखिलाफ मिल्कियत के वक्त आजाद होना, लिअन्नहु मुताल्लिकुम बिलकराबति वल महरमियति बिल हदीसी, इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक रिश्तेदारी और महरम होने से है हदीस की वजह से, वलि अन्नल कराबता मूजिबतुन लिस्सिलती, तवज्जो से यह जगह समझना भाई, ये मुश्किल जगह है, वलि अन्नल कराबता मूजिबतुन लिस्सिलती, और इसलिए क्योंकि कराबत वो वाजिब करती है लिस्सिलती एहसान को। मुजिबा का माना चाहे वाजिब करने के कर लें, चाहे साबित करने के कर लें, वली अन्नल कराबत मूजिबतुन लिस्सिलती, और इसलिए क्योंकि कराबत जो है यानी रिश्तेदारी जो है मूजिबतुन लिस्सिलती, सिला कहते हैं एहसान और नेकी को, रिश्तेदारी जो है वो एहसान को वाजिब करती है, रिश्तेदार के साथ एहसान करना चाहिए, नेकी करनी चाहिए, तो कहते हैं वली अन्नल कराबत मूजिबतुन लिस्सिलती, और इसलिए क्योंकि रिश्तेदारी जो है ये एहसान को साबित करती है, व माल इत्तेफाकी फी दीनी आकदू, व माल इत्तेफाकी फी दीनी, और दीन के अंदर इत्तेफाक के साथ आकदू, ये और ज्यादा ताकीद करती है एहसान की। रिश्तेदारी किसको साबित करती है? एहसान को, और जब दीन भी एक हो तो ये और ज्यादा ताकीद करती है एहसान की। माना समझ में आया? तो कहते हैं वह माल इत्तेफाक फी दीनी आकदू, और दीन में इत्तेफाक के साथ ये और ज्यादा ताकीद करती है, यानी एहसान की और ज्यादा ताकीद करती है। वह दवामुल मिल्किल यमीनी आला फिल कतीअति मिन हिरमानिन नफकती। अब देखिए यहां दो चीजें आ गई, रिश्तेदारी एहसान को वाजिब करती है, और जब दीन एक हो तो फिर इसमें ताकीद भी आ जाती है, यानी फिर ये इल्लत मुअक्कदा बन जाती है भाई, रिश्तेदार के साथ क्या करना चाहिए? नेक सुलूक। और अगर दीन भी एक हो तो इसमें ताकीद आ गई, तो मालूम हुआ एहसान की इल्लत क्या है? रिश्तेदारी। और दीन एक हो तो इसमें और ताकीद आ जाती है, मालूम हुआ यह इल्लत मुअक्कदा है, सिर्फ रिश्तेदारी यह इल्लत है एहसान की। किसकी? जुबान से दोहराएं भाई, मुश्किल जगह है, रिश्तेदारी ये क्या है? इल्लत है। किस चीज की इल्लत है? एहसान की। और अगर दीन भी एक हो तो फिर ये इल्लत है मुअक्कदा है, इसमें ताकीद आ गई है। किस चीज की? एहसान की। तो सिर्फ रिश्तेदारी ये एहसान की इल्लत है, और दीन भी एक हो तो फिर ये इल्लत है मुअक्कदा बन गई एहसान के लिए, और ताकीद आ गई इसके अंदर। और इसी तरह याद रखो, अगर कोई शख्स अपने करीबी रिश्तेदार को नफका नहीं देता तो इस सूरत के अंदर कता रहमी है, ये तो रिश्ते को तोड़ रहा है, करीबी रिश्तेदार भी है और वो शख्स मोहताज भी है और आपके पास माल भी है और आप फिर भी उसकी मदद नहीं कर रहे, ये तो आप कतए रहमी कर रहे हैं। तवज्जो है, मालूम हुआ मालदार होने के बावजूद फकीर रिश्तेदार की मदद न करना ये कतए रहमी है भाई। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है वो फौरन उस पर आजाद हो जाता है, लेकिन अगर वो आजाद ना हो उस पर इसी तरह इसकी मिल्कियत बाकी रखी जाए तो इसमें भी कतई रहमी है। रिश्तेदार के साथ तो नेक सुलूक करने का हुक्म है और आप उसको अपना ममलूक बनाकर, अपना गुलाम और बांदी बनाकर रखना चाहते हैं, करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है और आप उसको ममलूक बना के रखना चाहते हैं, तो इसमें भी कतई रहमी है, लेकिन इसमें आला दर्जे की कतई रहमी है, यानी बहुत ज्यादा दर्जे वाली कतई रहमी है भाई। तो नफका ना दो उसमें भी कतई रहमी, लेकिन ममलूक बनाकर रखो उसमें आला दर्जे की कतई रहमी है। फिर दोहराएं भाई लफ्जों को, किताब के अल्फाज दोहरा लें, दवा में मिलके यमीन, आपने क्या पढ़ा कि कोई शख्स जैसे ही अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है वो फौरन आजाद हो जाता है, लेकिन अगर वो आजाद न होता तो देखो मिलके यमीन में दवाम आ जाता, यानी यूं को मिल्कियत में दवाम आ जाता, तो दवा में मिल्कियत में भी कतई रहमी है और हिरमान नफका में भी कतई रहमी है। हिरमान का माना महरूम रखना, हिरमान नफका में भी कतई रहमी है, लेकिन दवा में मिल के अंदर आला दर्जे की कतई रहमी है, ज्यादा कतई रहमी है कि आप अपने करीबी महरम को अपना ममलूक बनाकर रखते हैं, तो दवा में मिल्क में आला दर्जे की कतई रहमी है और हिरमान नफका में अदना दर्जे की कतई रहमी है। तो लिहाजा जो आला दर्जे की कतर रहमी है वहां सिर्फ इल्लत का पाया जाना काफी है, इल्लत आएगी तो वह खत्म हो जाएगी। और इल्लत क्या थी? हां, कराबत, रिश्तेदारी। जब कोई किसी का करीबी रिश्तेदार है, यह रिश्तेदारी मूजिबतुन लिस्सिलाती, यह किसको साबित करती है? एहसान को साबित करती है। तो लिहाजा जब एक ऐसी चीज आ रही है जो कतई रहमी के अंदर आला दर्जे वाली है, यानी मिलके यमीन आ रही है, तो वहां नफ्से इल्लत भी काफी है, बस करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो मिल्कियत खत्म हो जाएगी। जबकि जो चीज कम दर्जे की कतई रहमी वाली है तो उसके अंदर सिर्फ इल्लत का होना काफी नहीं, बल्कि इल्लत मुअक्कदा का होना जरूरी है, यानी रिश्तेदारी भी हो और दीन भी एक हो, तो फिर उसके बाद हिरमान नफका दफा हो जाएगा और नफका वाजिब हो जाएगा। इल्लत मुअक्कदा जब पाई जाएगी तो अब नफका वाजिब होगा, यानी हिरमान नफका दफा हो जाएगा, नफके से महरूम रखना दफा हो जाएगा, यानी करीबी रिश्तेदार भी हो और दीन भी एक हो। बात समझ में आ गई? फिर दोहरा लें, रिश्तेदारी जो है ये सिला को वाजिब करती है, यानी ये इल्लत है एहसान की। करीबी रिश्तेदारी ये इल्लत है एहसान की, और इस करीबी रिश्तेदारी के साथ अगर दीन भी एक हो दोनों का, तो ये इल्लत मुअक्कदा हो गई, इसमें ताकीद आ गई और जोर आ गया। तो एक है इल्लत और एक है इल्लत मुअक्कदा भाई। और इसी तरह दवाम मिल्कियत, इसमें भी कता रहमी है, और हिरमान नफका इसमें भी कता रहमी है, लेकिन दवा में मिल्कियत में आला दर्जे की कता रहमी है और हिरमान नफका में अदना दर्जे की कता रहमी है। तो जो आला दर्जे की कता रहमी है उसके लिए नफ्स इल्लत ही काफी है। करीबी रिश्तेदारी आ गई तो वो दवा में मिल्कियत ना रहेगी, वो आजाद हो जाएगा। जबकि हिरमान नफका में कम दर्जे की कता रहमी है तो उसको खत्म करने के लिए सिर्फ इल्लत काफी नहीं, बल्कि वहां इल्लत मुअक्कदा चाहिए। या यूं कहो, दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि दवा में मिल्क में ज्यादा कतर रहमी है, लिहाजा उसको दफा करना वाजिब है, उसको बगैर मुअक्कद के ही दफा कर दो। दवा में मिल्क में ज्यादा कतर रहमी है तो सिर्फ इल्लत ही काफी है, आएगी और उसको दफा कर देगी जी। और जबकि हिरमान नफका में कम दर्जे की कतर रहमी है, लिहाजा वो सिर्फ इल्लत से दूर नहीं होगी बल्कि इल्लत मुअक्कदा से दूर होगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए किताब पर। तो कहते हैं वली अन्नल कराबत मुजिबतुन लिस्सिलती, और इसलिए क्योंकि रिश्तेदारी जो है ये एहसान को वाजिब करती है। वह माल इतफाक फी दीन आकदू, और दीन में इतफाक के साथ ये और ज्यादा ताकीद करती है, यानी एहसान की। वह दवा मुमिल की यमीनी, और मिल के यमीन का दायमी रहना। आला फिल कतीअति, ये ज्यादा है फिल कतीअति कतई रहमी में। दवा में मिल्क ये आला है किसमें? कतई रहमी में, रिश्ता तोड़ने में। मिन हिरमान नफकती, हिरमान नफका के मुकाबले में। फातबर नाफिल आला, तो हमने एतबार किया आला के अंदर असल इल्लती, असल इल्लत का। जो आला दर्जे की कतई रहमी है उसको दूर करना जरूरी है, तो नफ्स इल्लत भी आ जाए तो इसको दूर कर दो, दवा में मिल्क खत्म कर दो कि वह आजाद हो जाएगा। फातबर नाफिल आला असल इल्लती, तो हमने एतबार किया आला के अंदर असल इल्लत का। आला क्या चीज है? दवा में मिल, यह कतई रहमी में आला है, और असल इल्लत क्या है? सिर्फ करीबी रिश्तेदारी। तो फातबर नाफिल आला, तो हमने आला जो है यानी दवा में मिल्क में एतबार कर लिया असल इल्लती, असल इल्लत यानी करीबी रिश्तेदारी का। वफिल अदना, और अदना जो है यानी जो हिरमान नफका है, हिरमाने नफका जो कतर रहमी में अदना है, उसके अंदर हमने एतबार किया अल इल्लत अल मुअक्कदा, इल्लत मुअक्कदा का, कि कराबत भी हो और दीन भी एक हो। फलिहाद अफ्तरका, तो इसलिए ये दोनों जुदा हो गए, ये दोनों जुदा हो गए। एतराज ये होता था ना कि जब दीन अलग हो तो आप नफका वाजिब नहीं करते, और दीन अलग अलग हो फिर भी आप कहते हैं कि करीबी महरम रिश्तेदार आजाद हो जाएगा, तो दोनों में फर्क बयान फरमा दिया साहिब हिदायत ने। यह माना है फलिहाद अफ्तारका, तो इसलिए ये दोनों जुदा हो गए, यानी दोनों में फर्क आ गया, नफके और आजादी में फर्क आ गया कि नफके के अंदर इल्लत मुअक्कदा होना जरूरी है, फिर ही नफका वाजिब होगा, और आजादी जो है उसके अंदर नफ्स इल्लत भी काफी है, नफ्स इल्लत यानी करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो आजादी साबित हो जाएगी। भाई आगे देखिए, वला युशारिकुल वलदा, और औलाद के साथ शरीक नहीं होगा, फी नफकती अबवई ही, अपने वालिदैन के नफके में अहदुन कोई एक, अपने वालिदैन के नफके में औलाद के साथ और कोई रिश्तेदार शरीक नहीं होगा। एक आदमी है वो मोहताज है, फकीर है, और उसका भाई भी मालदार और उसकी औलाद भी मालदार, तो औलाद पे नफका आएगा, भाई पर नफका नहीं आएगा। तो कहते हैं वला युशारिकुल वलदा फी नफकती अबवाई ही अहदुन, और औलाद के साथ मां बाप के नफके में कोई एक भी शरीक नहीं होगा। लिअन्न लहुमा तावीलन फी मालिल वलदी बिन नस्सी, लिअन्न लहुमा तावीलन, इसलिए क्योंकि ये जो मां बाप हैं इनके लिए तावील की गई है, फी मालिल वलदी औलाद के माल में, बिन नस्सी नस के जरिए, नस के जरिए औलाद के माल में तावील की गई है मां बाप के लिए। वो जो हदीस के अंदर आता है भाई, एक सहाबी ने शिकायत फरमाई थी अपने बेटे की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे को बुलवाया और कहा अंता व मालू कली अबी का, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। भाई तो देखो मालूम हुआ हदीस के अंदर तावील की गई है इनके लिए। भाई याद रखो, फुकहा फरमाते हैं बेटे का माल अलग होता है और बाप का माल अलग होता है जी। लेकिन इस हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अंता व मालू कली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं जी। तो देखो हकीकत में अगरचे बेटे का माल अलग है, लेकिन बाकायदा नस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तावील करते हुए बेटे को और उसके माल को बाप का ममलूक करार दे दिया। तवज्जो है, तो हकीकत के अंदर बेटे का माल अलग है और बाप का माल अलग है, लेकिन नस में बेटे के माल को भी बाप का माल करार दिया गया है, यानी नस में तावील की गई है। बात समझ में आ गई। तो जब औलाद के माल में तावील मौजूद है कि वो बाप का है, तो लिहाजा जब औलाद का माल मौजूद है तो गोया बाप का माल मौजूद है, क्योंकि औलाद का माल किसका है, बाप का है, तो गोया बाप मालदार है, और जब बाप मालदार है तो फिर किसी और पर उसका नफका नहीं आएगा, इसी माल में से नफका लेगा। दलील समझ में आ रही है, नफका क्यों आता है, फकीर और मोहताज होने की वजह से, और बेटे के माल को औलाद के माल को बाप का माल करार दिया गया है, तो जब औलाद के पास माल मौजूद है, बाप के पास बेशक माल नहीं है लेकिन औलाद के पास तो माल मौजूद है, और औलाद का माल भी किसका माल है, बाप का माल है, तो गोया बाप मालदार है, जब बाप मालदार है तो उसका अपना माल मौजूद है, तो उसमें से अपने नफके का वो बंदोबस्त करेगा, किसी और रिश्तेदार पर वो नफका नहीं आएगा। दलील समझ में आ रही है। तो कहते हैं लि अन्न लहुमा तावील फी मालिल वलदी बिन नस्सी, इसलिए क्योंकि वालिदैन जो हैं उनके लिए तावील की गई है औलाद के माल में, बिन नस्सी नस के जरिए, वला तावील लहुमा फी माली गैरी ही, और वालिदैन के लिए कोई तावील नहीं है औलाद के माल के अलावा में। औलाद के माल के बारे में तो तावील की गई, और हदीस में क्या आया अंता व मालू का लि अबी का, लेकिन किसी और के माल के बारे में यह तावील नहीं की गई। भाई यहां इश्काल होता है, इश्काल होता है कि अगर औलाद का माल बाप का माल है तो फिर तो बाप जैसे चाहे उसका माल खर्च करे भाई, लेकिन आप कह रहे हैं अगर बाप मोहताज होगा, गरीब है, तो फिर वो नफका बेटे के माल में से ले सकता है। हालांकि ये जो हदीस है अंता व मालू कली अबी का, कि तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, ये हदीस तो क्या तकाजा कर रही है कि बाप को बेटे के माल का मालिक होना चाहिए। तो उसका जवाब देते हैं उलमा, फरमाते हैं कि और हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन औलादकुम हिबतुन लकुम, कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए हिबा है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है और आता है, यहबुली मैया शाह इनासाऊ व यहबुली मैया शाह दुकूरा, अल्लाह जिसको चाहते हैं मुअन्नस औलाद आता फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं मुजक्कर औलाद आता फरमाते हैं। वह अमवालोहुम लकुम, और वो जो औलाद हैं उनके अमवाल तुम्हारे लिए हैं। इजह तज तुम इलेहा, वह अमवालोहुम लकुम, और तुम्हारी औलाद के माल तुम्हारे लिए हैं। ईजा जब इख्ताज तुम, जब तुम मोहताज हो इलेहा उसके। तो देखा इस हदीस में आ गया कि जब तुम मोहताज हो फिर तुम्हारे लिए है माल भाई। और इसी तरह याद रखो कुरान के अंदर जिक्र है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसका बेटा भी मौजूद है और बाप भी मौजूद है, तो फिर इस सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलता है और बेटा असबा बनता है, बाकी सारा माल बेटा ले जाता है। अगर बाप बेटे के माल का मालिक था, हकीकत में मालिक था, तो फिर तो सारा माल बाप को मिलना चाहिए था, बेटे को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसका बेटा भी जिंदा है और उसका बाप भी जिंदा है, ये दोनों इसके वारिस हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। तो अगर उस हदीस को देखा जाए, हदीस में तो क्या आया था अंतवा मालुक अली अभी का, उस हदीस के मुताबिक तो मैयत का सारा माल बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि हदीस में क्या आया है अंतवा मालुक अली अभी का, लेकिन कुरान में जिक्र है बाप को छठा हिस्सा मिलेगा सिर्फ। मालूम हुआ ये जो हदीस में आया था अंतवा मालुक अली अभी का, यह हकीकत पर मबनी नहीं है, यह तावील पर मबनी है, यानी इसी तरह है, यानी इसी दर्जे में है, हकीकत में ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई कि बाप जब मोहताज हो वो बेटे के माल को ले सकता है। तो मालूम हुआ हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि ये कलाम तावील पर मबनी है भाई। तो ये माना है लिअन्ना लहुमा तावीलन फी मालिल वलदि बिन नस्सी, इसलिए क्योंकि ये जो वालिदैन हैं इनके लिए तावील की गई है औलाद के माल में, बिन नस्सी नस के जरिए, वला तावील लहुमा फी माली गैरी ही, और वालिदैन के लिए तावील नहीं है औलाद के अलावा किसी और के माल में। वली अन्नहु अक्रबुन नासी इलैहिमा, अब दूसरी दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया कि मां बाप का नफका औलाद पर ही होगा, किसी और रिश्तेदार पर नहीं होगा। तो कहते हैं वली अन्नहु अक्रबुन नासी इलैहिमा, और इसलिए क्योंकि ये जो औलाद है ये लोगों में से मां बाप के सबसे करीब हैं, क्योंकि ये इन्हीं का जुज है भाई, तो ये सबसे करीब हैं लोगों में से। फकान औला, तो ये औलाद ज्यादा लायक है बिस्तिहकाकी नफकत ही मा अलैही, कि मां बाप अपने नफके के मुस्तहिक हो अलैही इसी पर। जब लोगों में सबसे करीबी रिश्तेदार यही औलाद हैं तो इन्हीं पर मां बाप का नफका होना चाहिए भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन्नहु अक्रबुन नासी इलैहिमा, और इसलिए क्योंकि ये जो औलाद है ये लोगों में सबसे ज्यादा करीब है मां बाप के। फकान औला, तो ये औलाद ज्यादा लायक है बिस्तिहकाकी नफकती ही मां, कि मां बाप जो है अपने नफके के मुस्तहिक हों अलैही इस औलाद पर। ये औलाद सबसे करीब है मां बाप के, तो इन्हीं पर मां बाप का नफका होना चाहिए। वही अल जुकूरी वल इनासी बिस सवियति फी जाहिरी रिवायती, वही, और ये जो नफका है अल जुकूरी वल इनासी मुजक्कर और मुअन्नस पर, बिस सवियति बराबरी के साथ है, फी जाहिरी रिवायती जाहिर रिवायत में। जाहिर रिवायत में तो यह है कि मां बाप का नफका औलाद पर बराबरी के साथ होगा, चाहे औलाद मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस। मसलन मां बाप गरीब हैं और उनका एक बेटा है और एक बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी। अब अगर वरासत के एतबार से देखा जाए तो बेटे को बेटी से दुगना माल मिलेगा। लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के मुजक्कर के लिए दो मुअन्नस के बराबर हिस्सा है भाई। तो अगर ये मां बाप का इंतकाल होता है तो कुल माल के तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से बेटे को मिलेंगे और एक हिस्सा बेटी को। तो लिहाजा इमाम साहब से एक रिवायत है जो इमाम सरखसी ने जिक्र फरमाई है, वो फरमाते हैं कि यहां नफका भी उसी एतबार से आएगा। तवज्जो है, सूरत ये मां बाप गरीब हैं और उनका एक बेटा भी है और एक बेटी भी है और दोनों मालदार हैं। तो इमाम सरखसी रहमतुल्लाह इमाम साहब से रिवायत नकल फरमाते हैं कि बेटे पर बेटी से दुगना नफका होगा। मसलन मां बाप का एक दिन का खर्चा मसलन 1000 रुपया है, तो इस 1000 के तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से बेटे को अदा करने पड़ेंगे और एक हिस्सा बेटी को भाई, यानी वरासत के बकदर, वरासत के बकदर। लेकिन जाहिर रिवायत यह है, जाहिर रिवायत यह है कि दोनों पर यह नफका बराबरी के साथ आएगा भाई, यानी 1000 में से 500 बेटे को देना पड़ेगा और 500 बेटी को देना पड़ेगा। यही बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वही अल जुकूर वल इनासी, और ये नफका जो है मुजक्कर और मुअन्नस औलाद पर बेसवियती बराबरी के साथ है, फिर जाहिर रिवायत में वह हुआ सहीह, और यही कौल सहीह है भाई। ये जो जाहिर रिवायत में आया है यही सही है। दूसरी रिवायत में इमाम सरकसी जिक्र फरमाते हैं कि इमाम साहब फरमाते हैं कि बेटे और बेटी पर ये जो मां बाप का नफका आएगा ये वरासत के बकदर आएगा, और बेटे को बेटी के मुकाबले में वरासत में दुगना हिस्सा मिलता है, लिहाजा नफके के अंदर भी बेटे पर बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सा आएगा। लेकिन साहिब हिदायत फरमाते हैं कि जाहिर रिवायत में जो आया वह हुआ सहीह, यही सहीह है। लिअन्नल माना यशमलहुमा, इसलिए क्योंकि ये माना यानी ये इल्लत दोनों को शामिल है। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया था अंता व मालुका ली अबी का, मालूम हुआ औलाद का माल बाप का माल है, ये दोनों को शामिल है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और नीज साहिब हिदायत ने वजह बतलाई कि ये जो औलाद होती है ये तमाम लोगों से बढ़कर मां बाप के करीब होती है, क्योंकि ये उसका जुज है। तो ये माना बेटी में भी है और बेटे में भी है, ये लोगों में सबसे ज्यादा करीब है भाई, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, इसलिए क्योंकि यह इल्लत दोनों को शामिल है। ये जो हदीस में तावील की गई और ये जो लोगों में सबसे ज्यादा करीब हैं, तो इसके अंदर बेटा और बेटी दोनों शामिल हैं। तो यूं कहो कि जो साहिब हिदायत ने इल्लत बयान फरमाई वो इल्लत दोनों को शामिल है, बेटे को भी और बेटी को भी, लिहाजा दोनों पर नफका बराबरी के साथ आएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।